ये उन दिनों की बात है हंसराज और चारू के साथ।
हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ
ये उन दिनों की बात है।
मैं हूँ चारू।
मैं हूँ हंसराज। और आज मैं चारू को इस पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग के बाद भूतों का सबसे फेवरेट एक स्ट्रीट फूड होता है वो मैं खिलाने वाला हूँ।
और वो क्या है?
भूता।
Oh my God.
Okay, the main reason is, आज हम लोग फिर से भूतिया बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में, हमारे पहले एपिसोड में हमने भूतिया फिल्मों की बात की, कुछ भूतों से रिलेटेड। चारू ने अपना एक किस्सा सुनाया, मैंने अपना एक किस्सा शायद सुनाया, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। बट कहने के लिए इतना कुछ है भूतिया चीजों में, भूतिया फिल्मों के बारे में, कि आज हमने सोचा यार इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया ही जाए।
बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, मस्ती, बैंटर और लाइफ की मेमोरीज, हम बहुत एक इम्पोर्टेंट ट्रिविया देने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी भूतिया और हॉरर फिल्मों की जिसे सुनकर आप कहेंगे वाओ ऐसा भी हुआ था।
एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं सबसे पहली भूतिया। भूतिया साउंड्स वेरी एनीवेज, सबसे पहली हिंदुस्तान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली हॉरर फिल्म जो बनी थी वो रिलीज हुई थी 1949 में, जिसमें अशोक कुमार साहब थे और उनके साथ थी मधुबाला, और ये फिल्म थी महल।
ऑफ कोर्स, ये फिल्म शायद मैंने देखी नहीं है लेकिन सुना इसके बारे में बहुत कुछ है। So what's special about this film?
Actually, I've seen this movie in bits and parts. It's like, you know, थोड़ी हॉन्टिंग फिल्म है, मतलब कहानी एग्जैक्टली मुझे भी इतना याद नहीं है। एक महल में हमारे अशोक कुमार साहब जाते हैं, उनको पिछले जन्म की कुछ चीजें याद आती है, तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है। और खास तौर पर इस फिल्म के अगर गानों की बात करें, म्यूजिक की बात करें, देखिए ये मधुबाला के लिए सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी, वो एक सेंसेशन बन गई। इससे पहले भी दो एक हिट फिल्में उन्होंने दी थी लेकिन दिस वाज अ ऑल टाइम हिट फिल्म, और अशोक कुमार साहब तब बहुत बड़े स्टार भी थे। और इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, इस फिल्म का जब गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो एक शख्स वहां पर, कोई इंडस्ट्री से कोई शख्स, कोई किसी फिल्म का प्रोड्यूसर रहा होगा, तो उसने म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि यार अगर ये फिल्म के गाने चल गए ना मैं मान जाऊं, अगर ये फिल्म चलेगी तो इसके कॉन्टेंट के बेसिस पर चलेगी, गानों के बेसिस पर ये फिल्म चल ही नहीं सकती, एकदम मीडियोकर गाने हैं।
Oh my God, और गाने तो सबसे पॉपुलर हुए।
Exactly, और गाना जो लता जी ने गाया था जिससे वो ओवरनाइट सेंसेशन बनी, आएगा आएगा आएगा, कितनी बार कहती है पता नहीं, आएगा आने वाला, दैट सॉन्ग वॉज अ ब्लॉकबस्टर हिट। और एक और मिथ मैं बस्ट कर दूं उन सभी तमाम लोगों को जिनको लगता है कि इस फिल्म का संगीत नौशाद साहब ने दिया था, बिल्कुल गलत। इस फिल्म का संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश ने।
वो कौन थे?
खेमचंद प्रकाश जो उनके पिताजी के बेटे थे, म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश, जो 40s के दौर में एक बहुत बड़ा नाम थे और नौशाद साहब भी उनको बहुत मानते थे। वो सब प्रोमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स बिलीव द 40s।
ओके, सो अपार्ट फ्रॉम महल, खेमचंद प्रकाश साहब ने कौन कौन सी फिल्मों में म्यूजिक दिया था?
खेमचंद प्रकाश ने कुछ तकरीबन 30-40 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए जो इन्होंने संगीत दिया था, 1930s, लेट 1930s से लेकर अर्ली 50s तक, और जिनमें से कुछ फिल्में जैसे फरियाद, खिलौना जो 1942 में रिलीज हुई थी, काफी हिट फिल्म थी, मेहमान, चिराग, कुर्बानी और समाज को बदल डालो, माफी चाहूंगा, सिंदूर, और एक बहुत द सैड पार्ट इज दैट ही डाइड इन द अर्ली 50s, 52 के करीब उनकी मौत हुई। ही वाज ओनली 42।
ओह माय गॉड,
व्हाट अ लॉस। अगर जिंदा रहते तो पता नहीं और भी कितने हिट फिल्मों के लिए जो है वो गाने कंपोज करते। और एक और चीज इस फिल्म से हुई कि जब इस फिल्म का जो रिकॉर्ड रिलीज होता है ना, वो जो विनाइल रिकॉर्ड रिलीज होते हैं, विनाइल रिकॉर्ड ही कहते हैं उसे, फैन बोल रहा हूं, सो वो जब रिकॉर्ड्स रिलीज हुए तो गलती से मिसप्रिंट हुआ था कि सॉन्ग्स, फीमेल सॉन्ग्स संग बाय मधुबाला। तो लता जी को लगा यार ये क्या बात होती है, तो उन्होंने इस हक के लिए वो लड़ी कि यार सिंगर्स के नाम भी जो है क्लियरली प्रिंट होने चाहिए रिकॉर्ड्स में। और उसके बाद से ये चलन एक्चुअली चलने लगा कि सिंगर्स को भी बाकायदा रिकॉर्ड्स में क्रेडिट दिया जाता था, ना कि सिर्फ फिल्मों में।
ओह वाओ, दैट इज एन अमेजिंग ट्रिविया। वैसे ये गाना से मुझे ये याद आया कि एक लाइन गाते गाते कुछ और भी बातें करते हैं कुछ हॉरर फिल्मों की। सो हियर गोज, आएगा 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 आने वाला आएगा।
आगे मैडम, इडली वड़ा डोसा सांबर इंद वेणो क्या चाहिए। क्या गाए यार चारू, द नाइटिंगेल, आई वुड से अमेजिंग वॉइस यार। अच्छा, इस फिल्म के बाद 50s के दौर में एक और फिल्म रिलीज हुई थी विच एक्चुअली सेट अ बेंचमार्क इन थ्रिलर हॉरर जॉनरा, जो मिक्स जॉनरा होता है, और ये फिल्म थी मधुमती।
दिलीप कुमार एंड
वैजयंती माला। अच्छा, एक और दिलचस्प बात इस फिल्म की ये है कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तकरीबन 40-50% शूट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के और डायरेक्टर बिमल रॉय द ग्रेट फिल्म मेकर, उनके पैसे हुए खत्म।
अच्छा,
अब उन्होंने जाके दिलीप कुमार साहब को बोला कि भैया अब करे तो क्या करे, पैसे तो खत्म हो गए। तो दिलीप कुमार साहब ने उस दौर में एक आइडिया लगाया। बिमल दा को सभी जानते थे और दिलीप कुमार साहब की बहुत इज्जत, तक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तो उन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग, कैन बी दैट विदाउट एडिटेड, सिर्फ रशेस की स्क्रीनिंग रखी, कोई एडिट वेडिट नहीं किया, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया और जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको भी बुलाया और कहा कि सर ये फिल्म देखिए, अब देखिए हमारे पास पैसे हैं, पहले आप फिल्म देखिए। देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स तो हक्का बक्का रह गए, मतलब क्या फिल्म बनी है। उन्होंने कहा तो आप लगाएंगे पैसे, मतलब बेशक दिलीप साहब हम तो पैसे लगाएंगे इस फिल्म में। और इस तरह जाकर ये फिल्म पूरी हुई, कंप्लीट हुई, एंड व्हाट अ फिल्म। आगे चलकर इस फिल्म ने हॉलीवुड में भी कई सारी रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म वाली फिल्मों को इंस्पायर किया। एंड अगर बॉलीवुड की बात करें तो सबसे सुपरहिट फिल्म गर्ल्स, इंस्पिरेशन फ्रॉम मधुमती।
एब्सोल्युटली। ओके, तुमने इतनी सारी यू नो बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताया है, एंड टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड, आई थिंक वन ऑफ माय अर्लीस्ट एज अ टीनेजर जो मैंने फिल्म देखी थी वो थी इविल डेड। इसके पीछे एक कहानी है, वैसे मेरी कहानी है।
ओके, व्हाट इज दैट? लास्ट टाइम तो राजन भैया के बारे में तुमने बताया था,
exactly. उसके
युवा, फिर वही रात।
लेकिन आज मैं बताऊंगी कि इविल डेड के पीछे वाली क्या कहानी है। एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जब हम लोग कॉलेज में थे, थ्री ऑफ अस वर वेरी क्लोज, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स आउट ऑफ दोस थ्री, उनके पेरेंट्स गए हुए थे, एंड वी हैड दैट वन नाइट दैट वी वर ऑल स्टेइंग टुगेदर इन हर प्लेस, हर नेम इज मिनी, एंड सो पूजा, मिनी एंड मी, we decided to stay at Mini's place and we said, yaar, abhi tak na koi adultish film nahi dekhi.
Naughty girls.
Okay, so we thought, okay, chalo, you know, let's try. अब ये वो जमाना है जब VHS टेप्स और VHS यू नो वीडियो वाले भैया की दुकानें होती थी और वहाँ पे हम जाके वीडियो टेप्स लेकर आते थे,
और बहुत दिक्कत होती थी रिवाइंड कर करके सीन बार बार देखने में, जो आप लोग तो आई एम श्योर नहीं करते थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे।
ओके, सो हम लोग गए, हमने सोचा कि यार ये जो सामने वाले भैया हैं उनकी गली छोड़कर हम आगे जाते हैं ताकि ये हमको पहचान ना पाए बाद में। अब हमें क्या पता कि भाई फरीदाबाद बिंग फरीदाबाद, बड़े बड़े दूर दूर तक हमारे चर्चे फैले हुए थे। तो हम गए दूर वाले भैया की दुकान में और अब मांगे क्या आप ये भी नहीं पता। तो हमने कहा भैया वो जरा अपने एल्बम्स दिखाना, उस टाइम एल्बम्स हुआ करते थे विद द पोस्टर्स।
एग्जैक्टली, अब मुझे याद है पूरे एकदम छोटे-छोटे पोस्टर्स हुआ करते थे
फोटो साइज के। एग्जैक्टली, अब जैसे ही हमें कुछ लगा इसमें कुछ लग रहा है तो हमने ना दूर से ऐसे पॉइंट करते हुए भैया को बोला भैया ये वाली मिलेगी और हम तीनों कहीं और देख रहे हैं।
ओके,
एंड फॉर अ मोमेंट देयर वाज साइलेंस एंड देन ही सेज ये आपके मतलब की फिल्म नहीं है।
अब ये भी आप मुझे सिखाएंगे? Obviously we're kids, yeah.
Yeah, so we ended up getting Evil Dead.
Wow, and that's how जो एक fetish था कि यार एक adult film देखनी है, उसे Evil Dead में भी वैसे देखा जाए तो ये this was not meant to be for 18 के जो उस उम्र से जो छोटे के मतलब उस उम्र के जो नहीं है उनके लिए नहीं थी ये फिल्म। It was below 18 आप नहीं देख सकते थे, because कुछ scenes ऐसे थे जो like you know filmmakers को लगा कि 18 plus रखना, इसको A certificate मिला था, and scenes तो definitely बहुत सारे डरावने scenes थे, तो फिल्ममेकर्स ने डिसाइड किया कि इसको ए सर्टिफिकेट, एडल्ट सर्टिफिकेट दे ताकि 18 प्लस के जो व्यूअर्स हैं वो इसे देख पाए।
एंड टॉकिंग अबाउट इविल डेड, डिड यू नो दैट इस फिल्म का नाम पहले बुक ऑफ द डेड था।
बुक ऑफ द डेड,
या
तो लिखने वाला कौन मरा हुआ इंसान था।
और ये बुक ऑफ द डेड जब फिल्म बनाई गई तो इसे कान फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया। ओके, एंड डू यू नो दैट लेजेंडरी हॉरर राइटर स्टीफन किंग जो बहुत पॉपुलर है, ओके, उन्होंने ये फिल्म देखी एंड ही रोट अ ग्लोरियस रिव्यू ऑफ इट। ओके, और उनका रिव्यू देखकर लोगों ने बोला अरे वाह ये तो फिल्म
ने कहा है तो फिर होगा ही कुछ।
एग्जैक्टली, ये तो देखनी पड़ेगी फिल्म, एंड दे एंडेड अप वाचिंग इट एंड द फिल्म बिकेम अ कल्ट क्लासिक।
कल्ट क्लासिक फिल्म, एंड अगर आपने इविल डेड सीरीज नहीं देखी है जो अर्ली 80s में जो शुरू हुई थी, आपको जरूर और जरूर देखनी चाहिए। और देखने वाली हरकतें मैं और मेरे दोस्त किया करते थे, अगर हॉरर की बात करूं, डराने की बात करूं, एंड एक्चुअली मैं जितने भी लोग इस समय जो 18 से 24 साल की उम्र के जो बंदे मुझे सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज ये कोशिश भी मत करना करने की जो हम करते थे। हम क्या करते थे पता है, वेकेशन के टाइम पे रात को बाइक लेकर निकलते थे और लाइसेंस कुछ ही लोगों के पास था, और मुंबई में उस दौर में चलो लाइसेंस ये तो भी यार बाइक निकाल कर लेकिन लौंडे लपाटे हम लोग ऐसे ही निकल जाते थे। रात को 12 बजे निकलते थे और जिस किसी सोसाइटी में कोई वॉचमैन सो रहा होता था उसको जाके डराते थे। वी शुड वेयर मास्क्स,
ओह माय गॉड।
हमारा कहर इतना था कि जितने भी वॉचमैन थे आपस में डिस्कस करते थे कोई रात को कोई मास्क पहन के आता। और हमको नींद से जगा जाता है। एक बार तो मैंने मैंने मास्क पहना हुआ था, कुछ स्केलेटन का मास्क था, और स्लो हमने बाइक कर दी, हमने बाइक की इग्निशन ऑफ की, हम बाइक से उतरे मैं और मेरा दोस्त, उसने भी सेम मास्क पहना था। तो एक भाई साहब जो है वो कंबल ओढ़ के सोए हुए थे, ठंड का मौसम था, सोना तो बनता ही है, सो व्हाट इफ यू आर अ वॉचमैन, तो बेचारे सोए हुए थे। मैंने कहा जोर से कहा, उठ पापी उठ।
हमको सोने दो, आते हैं।
उठ पापी, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है।
उसको फिर भी पता ना चले, फिर जोर से उसको झिझोड़ा हमने, उठ पापी उठ। जैसे उसने देखा जो चीखा है वो,
oh my God.
उसके बाद हम लोग भागे, फिर हम लोग ने देखा 5-7 लोग है ना घर से फ्लैट से उतर कर नीचे आ गए, हो क्या रहा है। तो हम उस एरिया में पूरे बदनाम हो गए थे, और ऐसा हाल हुआ था कि हम लोग ने डिसाइड किया 2-3 महीने तक ये हरकत हम नहीं करेंगे। हर सोसाइटी में, हर दूसरे सोसाइटी में हमारी बात होती, कौन है ये जो मास्क में आके वॉचमैन को डराता है।
ओह माय गॉड, अच्छा इतनी ही डेयरिंग थी तो वो करके बताते जो कई हॉरर फिल्मों ने अपने प्रमोशन में यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब इविल डेड का प्रमोशन हुआ था तो ब्लड डोनर स्टेशंस ने फ्री टिकट्स दिए थे,
ओके,
कि आप ये मूवी देख के बताओ, एंड दे आल्सो गिव टी-शर्ट्स एंड पिन्स एंड बैजेस जिस पे लिखा था आई ब्लेड फॉर द इविल डेड।
वाह क्या बात है, व्हाट व्हाट अ कैची लाइन आई वुड से। इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी। इस फिल्म के लिए एक बहुत ही अजीब सा प्रमोशन मुकेश भट्ट साहब, हां क्रिमिनल के लिए उन्होंने एक हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए जो है एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया, मनीषा कोइराला किल्ड, क्रिमिनल इस फिल्म के लिए,
राइट
नागार्जुना की फिल्म। एंड एवरीवन वाज लाइक व्हाट हैपेंड, ये वो, एंड मनीषा कोइराला को भी जब पता, शी वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग मैन। तो लेकिन खैर ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, एंड लाइक यू नो ही फेल्ट दैट दिस वुड बी ही वुड बी एबल टू सेव द फिल्म, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। और अगर मैं बात करूं रामसे ब्रदर्स की, जैसे पिछली बार हमने रामसे ब्रदर्स के बारे में बात की थी, तो इनके जो पिता थे फतेहचंद यू रामसे, जिनको एफ यू रामसे के नाम से भी जाना जाता था, ये दरअसल सिंध से आए थे पार्टीशन के बाद, और मुंबई में आकर उन्होंने अपना सेटअप किया। कुछ फिल्में उन्होंने इनिशियली लेट 40s और 50s के दौर में उन्होंने प्रोड्यूस की, लेकिन किसी भी फिल्म को कोई भी कामयाबी नहीं मिली जब तक उन्होंने 1972 में अपनी सबसे पहली हॉरर फिल्म बनाई, दो गज जमीन के नीचे।
ओह माय गॉड, दैट वाज रियली पॉपुलर। बाय द वे, अगर लोग समझते हैं कि रामसे ब्रदर्स में इनके नाम क्या थे, तो श्याम रामसे और तुलसी रामसे।
ना 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 ना, ना, ये लोग बहुत सात भाई थे भैया।
क्या बात कर रहे हो,
सात भाई, उनके सबसे बड़े भाई कुमार रामसे, गंगू रामसे, तुलसी रामसे, अर्जुन रामसे, श्याम रामसे, केशु रामसे, किरम रामसे।
बस आराम से
एग्जैक्टली, एफ यू रामसे भी हुई, उनकी बीवी कहने लगी आराम से भैया सात हो गए भैया, अब आठवां ना होता हमसे। बट एक्चुअली ये एक ट्रेंड जो शुरू हुआ, अच्छा उसके बाद 1984 में एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म आई, वो फिल्म थी पुराना मंदिर, जिस फिल्म में पुनीत इसार थे, जो कूलीस फिल्म में बच्चन साहब के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया, तो काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी थी उनकी, तो उनको काफी पॉपुलैरिटी मिली इस फिल्म से। और लीड एक्टर्स की बात करूं तो आरती सुरेंद्रनाथ और मोनीश बैल थे। ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट रही, ये उस दौर की बात है जब अमिताभ बच्चन के और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों के रीरन्स हुआ करते थे थिएटर में। जैसे एक फिल्म रिलीज होकर 3-4 साल हो गए, जैसे लावारिस, तो ऐसे ही कुछ एक बच्चन साहब की एक फिल्म का रीरन चल रहा था और हाउसफुल जाता था। लेकिन जब लोगों को पुराना मंदिर इस फिल्म के बारे में पता चला, लोगों ने कहा लावारिस तो भाई देख चुके, ये देख लेते हैं। एंड वर्ड ऑफ माउथ, दिस फिल्म वाज अ सिल्वर जुबली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिल्वर जुबली से भी आगे इस फिल्म को बिजनेस मिला, और काफी काफी चर्चा में रही ये फिल्म, और चर्चा में रहे पहली बार जब बड़े पर्दे पर नजर आए सामरी जो है वो है, आपको मैं बता दूं एजुकेशनल, अगर उनकी क्वालिफिकेशन अगर आपको बताऊं, ही इज एन आईआईटी ग्रेजुएट बाय रूड़की, हां बाय द वे,
वाओ,
ये इंजीनियर है, फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, जितेंद्र के बहुत बड़े फैन थे, और अभी भी इज अ लिविंग लेजेंड। और कुछ एक ऐसी मेडिकल कंडीशन हुई चारू, जिसके वजह से उनका फेस जो है थोड़ा सा डिसफिगर हो गया, उनके हाथ पैर थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन रामसे फिल्म्स के साथ जो उनका नाता जुड़ा वो ऐसा जुड़ा कि रामसे सोच ही नहीं सकते थे कि किसी भी फिल्म में इनके बिना, सामरी के बिना फिल्म बनाया जाए। सामरी का असली नाम है मिस्टर अनिरुद्ध अग्रवाल, हु इज अ लिविंग लेजेंड।
वाओ, अनिरुद्ध अग्रवाल, क्या बात है।
तो आजकल तो अनिरुद्ध अग्रवाल साहब बहुत ज्यादा फिल्मों में या सीरियल्स में नजर नहीं आते, जैसे आपको बताइए होगा जी हॉरर शो जो इतना पॉपुलर हुआ था,
Correct.
जो रामसे ब्रदर्स ने बनाया था, और वो क्या एक बैकग्राउंड म्यूजिक था यार, इट वाज सो हॉन्टिंग, एंड माय ब्रदर यूज्ड टू गेट स्कैर्ड, लाइक बहुत छोटा बच्चा था, इसको तो रात को ना कभी कभी 11:30 बजे मेरे साथ जब सोता था ना तो मैं कहता था Mumbai. It used to be like amazing, I would say. लेकिन अगर बात करें 90s के दौर के फिल्मों की, जो 90s का जो दौर है जब शुरू हुआ, एक फिल्म आई थी जिसे देखकर मैं आज भी जब मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उस फिल्म के बारे में सोचकर, मतलब इससे डरावनी फिल्म मैं कह सकता हूँ मैंने अब तक नहीं देखी, if I can say that, but I think it was a cult film. और इस फिल्म में थी लीड एक्ट्रेस रेवती. फिल्म थी राम गोपाल वर्मा साहब की रात. If you haven't watched रात, please एक personal recommendation है, आप ये फिल्म जरूर और जरूर देखिएगा. देखिए हॉलीवुड की फिल्में 90s के दौर में जो हॉरर फिल्म्स बनती थी वो एक अलग खेल होता था डेफिनेटली. लेकिन भाई हॉरर फिल्म्स का बेंचमार्क आफ्टर द रामसी ब्रदर्स जो आरामसी फिल्में बनाते थे उसके बाद आई थिंक इट वाज सेट बाय राम गोपाल वर्मा.
एंड आई कंप्लीटली सेकंड दैट कि अगर आपने रेवती की रात नहीं देखी राम गोपाल वर्मा की, यू हैव नॉट येट वॉच्ड हिंदी फिल्म का सही वाला हॉरर.
आजकल की हॉरर फिल्म्स अगर आप देखें तो बहुत सारे यू नो स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वो दौर था जब स्पेशल इफेक्ट्स आई एम सॉरी इस्तेमाल होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टर पर भी एक प्रेशर होता था परफॉर्म करने के लिए. इवन हॉरर सीन्स देयर वाज अनदर एक्ट्रेस जो एक डांसर भी है जो इस फिल्म में असली भूत बनी है जिनका भूत रेवती के ऊपर आता है, एंड शी इज अनदर फैंटास्टिक एक्ट्रेस आई वुड से. उनके एक्सप्रेशंस बॉस
एब्सोल्युटली.
ओह माय गॉड, ओमपुरी साहब का एक छोटा सा रोल था, रोहिणी अथंगड़ी इस फिल्म में थी. अ फिल्म यू हैव टू वॉच एस्पेशियली इन द रात.
एब्सोल्युटली. ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई आज हॉरर फिल्म्स की, कुछ ट्रिविया बहुत सारी फिल्मों का दिया हमने, एंड ऑफ कोर्स वो म्यूजिक के साथ ही एंड करना बनता है जो जी हॉरर शो में हमें हॉन्ट किया करता था और आज तक लोगों को याद है.
लेट अस गो 1 2 3 4. इतनी लंबी रिकॉर्डिंग के बाद मुझे तो मन कर रहा. ओके बाय.
ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद चारू एंड हंसराज ऑन
ये उन दिनों की बात है.
हंसराज और चारू के साथ.